योएल की पुस्तक और लाओदीकियाई सातवें दिन एडवेंटिस्ट कलीसिया संख्या आठ
नंबर आठ।
वो किसे ज्ञान सिखाएगा और किसे सिद्धांत समझाएगा? क्या उन्हें जो दूध छुड़ाए गए हैं और स्तनों से अलग किए गए हैं? क्योंकि नियम पर नियम, नियम पर नियम, पंक्ति पर पंक्ति, पंक्ति पर पंक्ति, थोड़ा यहां थोड़ा वहां, क्योंकि हकलाती जुबान और दूसरी भाषा में वो इस प्रजा से बोलेगा जिनसे उसने कहा, यही वो विश्राम है जिससे तुम थके हुओं को विश्राम दे सकते हो, और यही वो ताजगी है। फिर भी वे सुनना नहीं चाहते थे, परंतु प्रभु का वचन उनके लिए उपदेश पर उपदेश, उपदेश पर उपदेश, पंक्ति पर पंक्ति, पंक्ति पर पंक्ति, यहां थोड़ा वहां थोड़ा, ताकि वे जाएं और पीछे की ओर गिरें और टूट जाएं और फंसें और पकड़े जाएं। इस कारण हे उपहास करने वाले पुरुषों, जो यरूशलेम में रहने वाली इस प्रजा पर शासन करते हो, प्रभु का वचन सुनो, क्योंकि तुमने कहा है, हमने मृत्यु के साथ वाचा बांधी है और अधोलोक के साथ हमारा समझौता है। जब उमड़ता हुआ कोड़ा होकर गुजरेगा तो वो हम तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि हमने झूठ को अपना शरण स्थान बना लिया है और मिथ्या के नीचे अपने आप को छिपा रखा है। इसलिए प्रभु परमेश्वर यूं कहता है, देखो, मैं सियोन में नींव के लिए एक पत्थर रख रहा हूं, परखा हुआ पत्थर, बहुमूल्य कोने का पत्थर, अटल नींव। जो विश्वास करता है वो हड़बड़ी नहीं करेगा। मैं न्याय को नाप की रेखा और धर्म को सीसे की डोरी ठहराऊंगा, और ओले झूठ के शरण स्थान को मिटा देंगे और जल पोहास को छिपने की जगह को बहा ले जाएंगे, और मृत्यु के साथ तुम्हारी वाचा रद्द कर दी जाएगी और अधोलोक के साथ तुम्हारा समझौता ठहरेगा नहीं। जब उमड़ता हुआ कोड़ा होकर गुजरेगा तब तुम उसके द्वारा रौंदे जाओगे। यशायाह 28:9-18।
यरूशलेम पर शासन करने वाले उपहास करने वाले लोग लाओदीकियाए सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च के नेता हैं, जिन्हें कुछ पद पहले ही यशाया ने इफ्राम के पियक्कड़ और अभिमान का मुकुट कहा है। पंतेकुस्त के दिन पत्रस ने उन लोगों को उत्तर दिया जो ये दावा कर रहे थे कि संदेश नशे में धुत लोगों द्वारा प्रचारित किया जा रहा है। अंतिम वर्षा का काल सच्ची और झूठी अंतिम वर्षा के संदेश के बारे में है। प्रभु की ओर से आया संदेश सदैव उपहासकों के दो वर्ग उत्पन्न करता है, और दोनों वर्ग दाख मधु पीते हैं। पवित्रीकृत संदेश या पवित्रीकृत दाख मधु वही है जिसे योएल में अविश्वासियों के मुख से छीन लिया जाता है।
जागो हे पियकड़ों और रो और विलाप करो, हे सब दाख मधु पीने वालों नए दाख मधु के कारण, क्योंकि वो तुम्हारे मुख से काट दिया गया है। योएल 1:5।
योएल के पहले अध्याय में दाख की बारी के दुष्ट बागबान, जो लाओदीकिया की सातवें दिन की एडवेंटिस्ट कलीसिया का प्रतिनिधित्व करते हैं, इस बात के संबंध में कि उनके मुंह से नया दाख मधु काट दिया गया है, दोषी ठहराए और न्याय किए जाते हैं। परमेश्वर ने दुष्ट मत वाले बागबानों से मांस और पेय अर्पण द्वारा दर्शाई गई अंतिम वर्षा में परमेश्वर के आत्मा के उंडेले जाने को काट दिया है या रोक रखा है।
अन्न भेंट और पेय भेंट यहोवा के घर से रोक दी गई। याजक यहोवा के सेवक शोक करते हैं, खेत उजड़ गया है, देश विलाप करता है, क्योंकि अन्न नष्ट हो गया है, नई दाखरस सूख गई है, तेल चुक गया है। लज्जित हो हे कृषकों, हाय हाय करो हे दाखबानों गेहूं और जौ के कारण, क्योंकि खेत की फसल नष्ट हो गई है, दाखलता सूख गई है और अंजीर का वृक्ष मुरझा गया है, अनार का वृक्ष, खजूर का भी और सेब का वृक्ष, यहाँ तक कि मैदान के सब वृक्ष मुरझा गए हैं, क्योंकि मिलियों में पैर पे हल्का सूख गया है। हे याजको कमर बांधो और विलाप करो, क्या ओ वेदी के सेवकों हाय हाय करो, आओ हे मेरे परमेश्वर के सेवको, टाट ओढ़े रात भर पड़े रहो, क्योंकि अन्न भेंट और पेय भेंट तुम्हारे परमेश्वर के घर से रोक दी गई हैं। उपवास को पवित्र ठहराओ, एक पवित्र सभा बुलाओ, पुरनियों और देश के सब निवासियों को अपने परमेश्वर यहोवा के घर में एकत्र करो और यहोवा को पुकारो हाय उस दिन पर, क्योंकि यहोवा का दिन निकट है और वो सर्वशक्तिमान की ओर से विनाश के समान आएगा, क्या हमारे देखते देखते अन्न काट नहीं लिया गया? हाँ, हमारे परमेश्वर के घर से हर्ष और आनंद भी। योएल 1:9-16।
जब यशाया के इफ्राइम के मध्यपी योएल में जागते हैं, तो वे जिस स्थिति में जागते हैं वो नव दाखरस के रूप में प्रस्तुत अंतिम वर्षा का संदेश है। उसे परमेश्वर की चुनी हुई वाचा की प्रजा से रोक कर रखा गया है। उस खंड में कॉर्न शब्द अनाज के लिए एक सामान्य शब्द है और परमेश्वर का वचन स्वर्ग की रोटी है, और उस खंड में उसे नष्ट कर दिया गया है। न्यू वाइन वह वर्तमान सत्य का संदेश है जो 9 सितंबर को आया था। न्यू वाइन इज ड्राइड अप और कट ऑफ, ये दोनों न्यू वाइन के लिए। केवल वे ही पहचानते हैं जो यिर्मयाह के ओद मार्गों पर लौट रहे हैं, क्योंकि न्यू संदेश हमेशा ओद संदेश के अनुरूप होता है। ड्राइड अप के रूप में अनुदित शब्द का अर्थ हिब्रू में टू बी अशेम्ड होता है। जो लोग लज्जित हैं, वे योएल और भविष्यद्वक्ताओं का एक प्रमुख विषय है। इफ्राइम के मध्य पे अपने नकली अंतिम वर्षा के संदेश से लज्जित है, जिसे प्रायः शांति और सुरक्षा का संदेश कहा जाता है। अन्न, नया दाखरस और तेल, ये तीन प्रतीक अंतिम वर्षा के संदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। अंतिम वर्षा को पवित्र आत्मा के उंडेले जाने के रूप में भी दर्शाया जाता है। पवित्र आत्मा का कार्य पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में दोषी ठहराना है, और ठीक उसी क्रम में परमेश्वर का वचन पाप के विषय में दोषी ठहराता है, और उसका प्रतीक अनाज है। नया दाखरस का होना उन लोगों की पहचान कराता है जिनके पास पवित्र आत्मा है, जो वर्षा और दाखरस द्वारा भी प्रतीकित किया गया है, क्योंकि वर्षा और दाखरस दोनों को संदेश या सिद्धांत के रूप में आसानी से दर्शाया जा सकता है।
फिर भी मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम्हारे लिए ये लाभदायक है कि मैं चला जाऊँ, क्योंकि यदि मैं न जाऊँ तो वो सांत्वनादाता तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं चला जाऊँ तो उसे मैं तुम्हारे पास भेज दूंगा, और जब वो आएगा तो वो संसार को पाप, धर्म और न्याय के विषय में ठहराएगा। पाप के विषय में, क्योंकि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। धर्म के विषय में, क्योंकि मैं अपने पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर नहीं देखोगे। न्याय के विषय में, क्योंकि इस संसार के प्रधान को दोषी ठहराया गया है। मुझे तुम्हें और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, परंतु तुम अभी उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो वो तुम्हें सारे सत्य में मार्गदर्शन करेगा, क्योंकि वो अपनी ओर से कुछ ना कहेगा, पर जो कुछ वो सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। यूहन्ना 16:13।
योएल का अन्न परमेश्वर का वचन है जो पाप का बोध कराता है। धार्मिकता उन लोगों द्वारा प्रकट होती है जिन्होंने अपनी मानवता को दिव्यता से उस वर्तमान सत्य संदेश के माध्यम से जोड़ा है, जिसे नया वर्तमान सत्य दाख मधु संदेश के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तेल न्याय का प्रतीक है, क्योंकि न्याय इस पर आधारित है कि जिनका न्याय हो रहा है उनके पास तेल है या नहीं। योएल का अन्न नया दाख मधु और तेल पाप, धार्मिकता और न्याय का बोध कराते हैं। पवित्र आत्मा के कार्य के वे सभी तत्व जो पछाड़ी वर्षा के उंडेले जाने से जुड़े हैं, उन सत्यों को बनाते हैं जो 9:11 के आरंभ होकर लाओदिकीय एडवेंटिज्म की परीक्षा लेने वाले हैं, जब योएल उन्हें जागो की आज्ञा देता है। अंतिम वर्षा के संदेश के तीन प्रतीक प्रकाशित वाक्य 14 की तीन स्वर्गदूतों के संदेशों के समानांतर है, और किसान लज्जित होने वाले हैं तथा दाखबाग के रखवाले विलाप करने वाले हैं। योएल में परमेश्वर की प्रजा कभी लज्जित नहीं होगी।
और तुम जानोगे कि मैं इसराइल के बीच में हूँ और कि मैं ही तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, और मेरे सिवा कोई नहीं, और मेरी प्रजा कभी लज्जित नहीं होगी। योएल 2:27।
किसान और दाखबाग के रखवाले लज्जित हैं और विलाप कर रहे हैं, क्योंकि जो नकली अंतिम वर्षा का संदेश वे प्रस्तुत करते हैं वो उस दाख बाग में जीवन उत्पन्न करने में असमर्थ है जिसकी देखभाल उन्हें सौंपी गई थी। एडवेंटिज्म को अपनी भविष्यद्वक्तरी से पता है कि उन्हें अंतिम वर्षा के अनुभव को पूरा करने के लिए बुलाया गया था, परंतु खेतों के फल मुरझा गए हैं। वे लज्जित हैं और विशेषकर गेहूं और जौ के लिए रोते हैं। मसीह के पुनरुत्थान के दिन जौ के पहलौटे के फल का अर्पण पिंतेकुस्त की उस अवधि का आरंभ था, जो पिंतेकुस्त पर गेहूं के पहलौटे के फल के अर्पण के साथ समाप्त हुई। एप्रम के शराबी लज्जित हैं, क्योंकि वे पिंतेकुस्त की अवधि के गलत पक्ष में हैं, जो 9:11 से लेकर रविवार के कानून तक दोहराई जाती है, जब अंतिम वर्षा बरस रही है।
बहुतों ने बहुत हद तक प्रारंभिक वर्षा को ग्रहण करने में असफलता पाई है। उन्होंने वे सब आशीषें नहीं पाई जो परमेश्वर ने इस प्रकार उनके लिए प्रदान की हैं। वे अपेक्षा करते हैं कि जो कमी है वो अंतिम वर्षा से पूरी हो जाएगी। जब अनुग्रह की सबसे प्रचुरता प्रदान की जाएगी, तब वे उसे ग्रहण करने के लिए अपने हृदय खोलने का इरादा रखते हैं। वे एक भयानक भूल कर रहे हैं। मनुष्य के हृदय में अपनी ज्योति और ज्ञान देकर परमेश्वर ने जो कार्य आरंभ किया है वो निरंतर आगे बढ़ता रहना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आवश्यकता का बोध होना चाहिए। आत्मा के निवास के लिए हृदय को हर प्रकार की अशुद्धि से खाली कर शुद्ध किया जाना चाहिए। पाप के अंगीकार और त्याग, लगन भरी प्रार्थना और स्वयं को परमेश्वर के प्रति समर्पण के द्वारा ही प्रारंभिक चेलों ने पेंटेकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा के उंडेले जाने के लिए तैयारी की थी। वही कार्य बस अधिक बड़े पैमाने पर अब किया जाना चाहिए। तब मनुष्य को केवल आशीष मांगनी थी और उसके विषय में प्रभु द्वारा उस कार्य को सिद्ध करने की प्रतीक्षा करनी थी। कार्य परमेश्वर ने ही आरंभ किया है और वही अपने कार्य को पूरा करेगा। यीशु मसीह में मनुष्य को सिद्ध बनाकर, पर प्रारंभिक वर्षा से अभिव्यक्त अनुग्रह की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। केवल वे ही जो उन्हें मिली हुई ज्योति के अनुसार जीते हैं, अधिक ज्योति प्राप्त करेंगे। यदि हम सक्रिय मसीही सद्गुणों के व्यावहारिक प्रदर्शन में प्रतिदिन प्रगति नहीं कर रहे, तो हम अंतिम वर्षा में पवित्र आत्मा के प्रकट होने को पहचान नहीं पाएंगे। वो हमारे चारों ओर के हृदयों पर बरस रही होगी, पर हम न तो उसे पहचानेंगे और न ही ग्रहण करेंगे। सेवकों के लिए गवाहियां 507-507।
उस रेखा के संदर्भ में जिसे सिस्टर व्हाइट पेंटेकोस्टीय काल कहती हैं, प्रारंभिक वर्षा यह थी कि अपने पुनरुत्थान के पश्चात अपनी स्वर्गीय सभा से उतरकर मसीह ने शिष्यों पर सांस फूंकी। इसी संदर्भ में अंतिम वर्षा पेंटेकोस्ट थी। पेंटेकोस्टीय काल के अल्फा में कुछ बूंदें शिष्यों पर फूंकी गईं और ओमेगा में जिन शिष्यों पर फूंका गया था वे सारे संसार के सामने आग की जिह्वाओं में बोल रहे थे। आरंभ और अंपापन दोनों पर पवित्र आत्मा का प्रकटन। आरंभ में देवत्व ने एक संदेश के माध्यम से पवित्र आत्मा को मानवता तक पहुंचाया और समापन पर जिह्वाओं, मानवता और आग देवत्व ने द्वारा दर्शाए गए रूप में देवत्व और मानवता संयुक्त होकर एक संदेश के माध्यम से पवित्र आत्मा को मानवता तक पहुंचाते हैं। आरंभ में जौ की पहली उपज की भेंट मसीह के पुनरुत्थान से मेल खाती है और पेंटेकोस्ट की पहली उपज की भेंट पर गेहूं की दो रोटियां पेंटेकोस्ट से मेल खाती हैं।
वे दो रोटियां ही ऐसी एकमात्र भेंट थीं जिनमें खमीर सम्मिलित था, जो पाप का प्रतीक है। रोटियां पकाई गई थीं, इस प्रकार वे पाप के हटाए जाने का प्रतिनिधित्व करती थीं, परंतु इस सत्य को भी बनाए रखती थीं कि 144,000 का प्रतिनिधित्व करने वाली वे दो हिलाई जाने वाली रोटियां ऐसे पुरुष और स्त्रियां थीं जो पापी थे, जिन्हें मलाकी अध्याय 3 में वाचा के दूध द्वारा उन पापों से शुद्ध किए गए थे। इस प्रकार पेंटेकोस्टीय काल का अल्फा स्वर्ग की रोटी द्वारा अपने चेलों को शिक्षा देने का प्रतीक था और उस काल का ओमेगा उन्हीं चेलों को दो रोटियों के रूप में प्रतीकित करता था जिन्हें स्वर्ग की ओर उठाया गया था। इसी तरह आग की जीभों द्वारा दर्शाए गए देवत्व और मानवत्व का प्रतीक और हिलाई जाने वाली भेंट का ऊपर उठाया जाना, जो चेलों के द्वारा संदेश को संसार तक ले जाने का प्रतिरूप था, मिलकर ये दिखाते हैं कि 144,000 को ऐसी भेंट के रूप में उठाया जाना है जो यीशु मसीह का पूर्णतः प्रतिनिधित्व करती है। और यीशु मसीह ये दर्शाते हैं कि जब देवत्व मानवत्व के साथ संयुक्त होता है तो वो पाप नहीं करता। पहली वर्षा को प्राप्त करने में असफल होना, जबकि ये अपेक्षा करना कि पहली वर्षा के साथ परमेश्वर द्वारा प्रदान किए गए सभी लाभों की कमी को अंतिम वर्षा पूरा कर देगी, एक भयंकर भूल है। पहली वर्षा यिर्मयाह के पुराने मार्ग है जिन्हें 9-11 पर चलने के मार्ग के रूप में पहचाना गया था। ये भयंकर भूल है और साथ ही एक प्रबल भ्रम भी, जो लोगों को ये सोचने में ले जाता है कि उनके पास चट्टान पर निर्मित दन अंतिम वर्षा का संदेश है, पर अंततः वे पाते हैं कि उनका संदेश रेत पर बना था। अंतिम वर्षा के समय में 144,000 का प्रतिनिधित्व करते हुए पतरस को ये सीधे सीधे बताने में कोई शर्म नहीं थी कि कौन नशे में था और कौन नहीं। सब भविष्यद्वक्ता और अंतिम दिनों के विषय में बोलते हैं, और योएल इफ्राइम के मत वालों के जाग उठने और इस स्पष्ट प्रमाण से सामना होने को दर्शाता है कि अंतिम वर्षा की सामर्थ्य के अधीन तीसरे स्वर्गदूत की ऊंची पुकार की घोषणा करने वाली प्रजा होने का जो विशेषाधिकार था, वो सदा के लिए हटा लिया गया है। 144,009 से लेकर रविवार के कानून तक अंतिम वर्षा की अवधि के दौरान विकसित होकर मुहरबंद दशायत किए जाते हैं। वे वही लोग हैं जो मेमने का वो जहां भी जाता है अनुसरण करते हैं। पेंटेकॉस्ट पर पतरस उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो अंतिम वर्षा का संदेश सुनाते हैं, और वो इस संदेश को योएल की पुस्तक पर आधारित करता है। वे यहूदी जिन्हें अपने समूचे इतिहास में पेंटेकॉस्ट मनाने की जिम्मेदारी दी गई थी, उन्हें पतरस ने यह बताया कि जिन सब पिछले पेंटेकॉस्टों ने जिस पेंटेकॉस्ट की ओर संकेत किया था वो अब पूरा हो रहा है। इफ्राइम के मद्यपियों के समान वे यहूदी बाबुल की मदिरा से इतने मतवाले थे कि जब पतरस और वे 11 योएल की पुस्तक के संदर्भ में अंतिम वर्षा का संदेश प्रस्तुत कर रहे थे, तब उन्होंने उन पर ही मद्यपी होने का आरोप लगाया। योएल के पहले अध्याय की 5वीं आयत में जब इफ्राइम के मद्यपी जागते हैं तो वे अंतिम वर्षा की परीक्षा प्रक्रिया का सामना करते हैं जहां दो वर्ग बनते हैं। उस परीक्षा प्रक्रिया में एक वर्ग अंतिम वर्षा के संदेश को पहचान लेता है और दूसरा वर्ग नहीं।
हमें अंतिम वर्षा की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। ये उन सब पर आने वाली है जो हम पर गिरने वाली कृपा की ओस और फुहारों को पहचानेंगे और उन्हें अपना लेंगे। जब हम प्रकाश की झलकियों को बटोरते हैं, जब हम परमेश्वर की अटल दयाओं की कद्र करते हैं जो चाहता है कि हम उस पर भरोसा रखें, तब हर प्रतिज्ञा पूरी होगी। क्योंकि जैसे पृथ्वी अपनी कली निकालती है और जैसे बगीचा उसमें बोई हुई वस्तुओं को अंकुरित कर देता है, वैसे ही प्रभु परमेश्वर सब जातियों के सामने धार्मिकता और स्तुति को अंकुरित करेगा। यशाया 61:11। पूरी पृथ्वी परमेश्वर की महिमा से भर दी जाएगी। सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट बाइबल कमेंट्री, खंड 7:9-94।
पहचानना का अर्थ स्मरण करना या ज्ञान को पुनः प्राप्त करना है, क्योंकि अंतिम वर्षा का संदेश उन बीते पवित्र इतिहासों द्वारा पहचाना जाता है जो अंतिम वर्षा के इतिहास का चित्रण करते हैं। पेंटिकॉस्ट में पतरस का इतिहास योएल द्वारा प्रतिपादित ऐतिहासिक ढांचे के भीतर स्थापित था। योएल की रूपरेखा और पतरस में उसकी पूर्ति 1844 की मध्यरात्रि पुकार के इतिहास के दो साक्षी प्रस्तुत करती हैं। वे तीन साक्षी और अन्य अंतिम वर्षा के इतिहास, परिस्थिति और संदेश के उदाहरण के रूप में पहचाने जाने चाहिए। जब मसीह स्वर्गारोहित होकर फिर लौटे, तब उन्होंने शिष्यों पर श्वास फूंकी। वो पेंटिकॉस्ट पर पवित्र आत्मा के महान उंडेले जाने से पहले की कुछ बूंदें मात्र था। आरंभ और अंत दोनों में पवित्र आत्मा के उंडेले जाने का प्रगटीकरण हुआ। मसीह से उनके शिष्यों को मिली वे कुछ बूंदें पेंटिकॉस्ट के काल का अल्फा है, जो ओमेगा पर समाप्त होता है, जब शिष्यों से संसार तक संदेश उंडेला जाता है। अल्फा जाओ के पहिलौठे की भेंट से चिह्नित है और गेहूं के पहिलौठे की भेंट पर समाप्त होता है। अंतिम वर्षा की शुरुआत 9 नवंबर को न्यूयॉर्क सिटी की विशाल इमारतों के ध्वस्त किए जाने से चिह्नित हुई। ये उस इतिहास की शुरुआत को दर्शाता है जो रविवार के कानून तक ले जाता है। 9 नवंबर को जाओ के पहिलौठे की भेंट द्वारा दर्शाया गया है और रविवार का कानून गेहूं के पहिलौठे की भेंट है। इफ्राइम के पेपियाकड़ इस वास्तविकता से जाग उठते हैं कि उनका राज्य उनसे ले लिया जाएगा और ऐसे लोगों को दे दिया जाएगा जो उचित फल उत्पन्न करेंगे। योएल पियकड़ों की अवधना को ये बताकर उजागर करता है कि अन्न बलि और पान बलि यहोवा के घर से काट दे गए हैं और नया दाखरस उनके मुख से काट दिया गया है। हिब्रानी में नया दाखरस का अर्थ ताज़ा निचोड़ा हुआ रस है, परपांचवी आयत में पियकड़ों द्वारा पिया जाने वाला दाख मधु किण्वित रस है। दाख मधु के दो प्रकार है जो शिक्षा का प्रतीक है, और योएल के संदर्भ में ये शिक्षा पश्चात वर्षा का संदेश है। इफ्राइम के पियकड़े किण्वित रस पीते रहे हैं और वे नए ताज़ा निचोड़े हुए रस से काट दिए गए हैं। दाख मधु के दो प्रकार दो पश्चात वर्षा संदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं और पियकड़े शुद्ध संदेश से काट दिए गए हैं। काट दिया गया के रूप में अनुदित हिब्रानी शब्द का आधार प्राचीन वाचा प्रथा पर है, जिसमें पशु काटे जाते थे और उनके टुकड़ों के बीच से होकर चला जाता था। काट दिया जाना का अर्थ है परमेश्वर की वाचा के लोगों के रूप में अस्वीकार कर दिया जाना।
योएल की पुस्तक अंतिम दिनों में परमेश्वर की प्रजा की पहचान करती है, जो 70 वर्ष में दानियेल की पुस्तक के मुहर खुलने के परिणाम स्वरूप उभरे मिलेराइटों से आरंभ होकर 1979 में दानियेल की पुस्तक की मुहर खुलने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले 144,000 पर समाप्त होती है। आरंभ में पवित्र आत्मा का उंडेला जाना एक्सेटर कैंप मीटिंग से लेकर 22 अक्टूबर 1844 की निराशा तक के कालखंड द्वारा दर्शाया गया था। उस इतिहास ने मट्टी अध्याय 25 में 10 कुमारियों के दृष्टांत को पूरा किया, जो 144,000 के इतिहास में अक्षरशः दोहराया जाता है।
मट्टी 25 की 10 कुमारियों का दृष्टांत भी एडवेंटिस्ट लोगों के अनुभव को चित्रित करता है। द ग्रेट कॉन्ट्रोवर्सी 393। मुझे प्रायः 10 कुवारियों के दृष्टांत की ओर संकेत किया जाता है, जिनमें से 5 बुद्धिमान थीं और 5 मूर्ख। ये दृष्टांत अक्षरशः पूरा हुआ है और होगा, क्योंकि इसका विशेष अनुप्रयोग इसी समय के लिए है, और तीसरे स्वर्गदूत के संदेश के समान ये पूरा हुआ है और समय के अंत तक वर्तमान सत्य बना रहेगा। रिव्यू एंड हेरल्ड, अगस्त 19, 1890। एक संसार दुष्टता, छल और भ्रम में पड़ा है, मृत्यु की छाया में सोया हुआ। कौन है जो उन्हें जगाने के लिए आत्मिक पीड़ा महसूस कर रहा है? कौन सी आवाज उन तक पहन सकती है? मेरा मन भविष्य की ओर चला जाता है, जब यह संकेत दिया जाएगा, देखो दूल्हा आ रहा है, इससे मिलने के लिए बाहर निकलो। परंतु कुछ लोग अपने दियों को फिर से भरने के लिए तेल लेने में देर कर देंगे, और बहुत देर से उन्हें पता चलेगा कि तेल द्वारा जिसका प्रतिनिधित्व किया गया है, वह चरित्र हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। वह तेल मसीह की धार्मिकता है, वह चरित्र का प्रतीक है, और चरित्र हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। कोई व्यक्ति इसे किसी और के लिए प्राप्त नहीं कर सकता। हर एक को अपने लिए ऐसा चरित्र प्राप्त करना होगा जो पाप के हर दाग से शुद्ध किया गया हो। बाइबल इको, 4 मई 1896।
कौन जगाने के लिए आत्मा की वेदना दुष्टता में पड़ा हुआ संसार महसूस कर रहे हैं? योएल इस प्रश्न का उत्तर देता है,
और ऐसा होगा कि जो कोई प्रभु के नाम को पुकारेगा वो उद्धार पाएगा, क्योंकि सियोन पर्वत और यरूशलेम में उद्धार होगा, जैसा प्रभु ने कहा है, और उन बचे हुओं में जिन्हें प्रभु बुलाएगा। योएल 2:62।
हम इन बातों को अगले लेख में जारी रखेंगे।
पुनरुत्थान के दिन की देर दोपहर में दो शिष्य एमाउस की ओर जा रहे थे, जो यरूशलेम से 8 मील दूर एक छोटा सा नगर था। इन शिष्यों का मसीह के कार्य में कोई प्रमुख स्थान नहीं रहा था, पर वे उनमें निष्ठापूर्वक विश्वास करते थे। वे पास्का मनाने नगर आए थे और हाल में घटी घटनाओं से अत्यंत उलझन में थे। उन्होंने सुबह ये समाचार सुना था कि मसीह का शरीर कब्र से हटा दिया गया है, और उन स्त्रियों का ये वृत्तांत भी जिन्होंने स्वर्गदूतों को देखा था और यीशु से मिली थी। अब वे ध्यान और प्रार्थना करने अपने घरों को लौट रहे थे। उदास मन से वे संध्या समय चलते रहे, मुकदमे और क्रूस पर चढ़ाए जाने के दृश्यों की चर्चा करते हुए। इससे पहले वे कभी इतने हताश नहीं हुए थे। आशाहीन और विश्वासहीन न होकर वे क्रूस की छाया में चल रहे थे। अपनी यात्रा में वे अभी बहुत दूर नहीं बढ़े थे कि एक अजनबी उनसे आ मिला, पर वे अपने शोक और निराशा में इतने डूबे हुए थे कि उन्होंने उसे ध्यान से नहीं देखा। वे अपनी बातचीत जारी रखते हुए अपने हृदय के विचार व्यक्त कर रहे थे। वे मसीह द्वारा दिए गए पाठों के विषय में तर्क वितर्क कर रहे थे, जिन्हें वे समझ पाने में असमर्थ प्रतीत होते थे। जब वे घटित घटनाओं की चर्चा कर रहे थे, तो यीशु उन्हें सांत्वना देने को तरस रहे थे। उन्होंने उनका शोक देखा था, वे उन परस्पर परोधी उलझन भरे विचारों को समझते थे जो उनके मन में ये प्रश्न उठाते थे, क्या ये व्यक्ति जिसने अपने आप को इतना अपमानित होने दिया मसीह हो सकता है? उनका शोक रोका नहीं जा सका और वे रो पड़े। यीशु जानते थे कि उनके हृदय प्रेम से उनसे बंधे हुए हैं और वे उनके आंसू पोंछ देने तथा उन्हें आनंद और हर्ष से भर देने को लालायित थे, परंतु पहले उन्हें ऐसे पाठ देना था जिन्हें वे कभी न भूलें। उसने उनसे कहा, जब तुम चलते चलते उदास हो तो आपस में जो बातें करते हो वे कैसी हैं? तब उनमें से एक जिसका नाम क्लियोपिस था ने उत्तर में उससे कहा, क्या तू अकेला यरूशलेम का परदेशी है जो इन दिनों वहां जो बातें घटी हैं उन्हें नहीं जानता? उन्होंने अपने स्वामी के विषय में अपनी निराशा उसे बताई जो परमेश्वर और सब लोगों के सामने कार्य और वचन में पराक्रमी एक भविष्यद्वक्ता था, परंतु महायाजकों और हमारे शासकों उन्होंने कहा ने उसे मृत्यु की सजा दिलाने के लिए सौंप दिया और उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। निराशा से व्यथित हृदय और कांपते हुए होंठों से उन्होंने जोड़ा, हम तो ये आशा करते थे कि वही इसराइल का उद्धार करने वाला था, और इन सब के अलावा इन बातों को हुए आज तीसरा दिन हो गया है। ये आश्चर्य की बात है कि शिष्यों को मसीह के वचन स्मरण नहीं रहे और उन्होंने ये न समझा कि जो घटनाएं घट चुकी थीं उनका उन्होंने पहले ही पूर्व कथन कर दिया था। वे ये न समझ सके कि उनकी घोषणा का अंतिम भाग भी पहले भाग की ही भांति निश्चय ही पूरा होगा कि तीसरे दिन वो फिर जी उठेंगे। यही वो बात थी जिसे उन्हें याद रखना चाहिए था। याजकों और शासकों ने इसे नहीं बुलाया। जिस दिन तैयारी के दिन के बाद वाला दिन था, उस दिन महायाजक और फरीसी पिलातस के पास इकट्ठे हुए और कहने लगे, स्वामी, हमें स्मरण है कि जब वो छलिया अभी जीवित था तब उसने कहा था, तीन दिन के बाद मैं फिर जी उठूंगा। मत्ती 27 सेक्शन 67 सारेख, और उन्हें ये वचन याद नहीं रहे। तब उन्होंने उनसे कहा, हे मूर्खों और हृदय से शिथिल, जो भविष्यद्वक्ताओं की कही हुई सब बातों पर विश्वास करने में सुस्त हो, क्या मसीह को इन बातों को सहना और अपनी महिमा में प्रवेश करना आवश्यक नहीं था? शिष्य आश्चर्य करने लगे कि ये अजनबी कौन हो सकता है जो उनकी आत्मा के भीतर तक उतर जाता है और ऐसी गंभीरता, कोमलता और सहानुभूति के साथ और इतनी आशा से भरे हुए शब्दों में बोलता है। मसीह के साथ विश्वासघात होने के बाद से पहली बार उन्हें आशा होने लगी। वे बार बार अपने साथी की ओर ध्यान से देखते और सोचते कि उसके वचन ठीक वही हैं जो मसीह ने कहे होते। वे विस्मय से भर गए और उनके हृदय हर्ष भरी आशा से धड़कने लगे। मूसा से आरंभ करके जो बाइबल के इतिहास का आदि है, मसीह ने समस्त पवित्र शास्त्रों में अपने विषय की बातों की व्याख्या की। यदि वो पहले ही अपने को उन्हें प्रकट कर देता तो उनके हृदय तृप्त हो जाते। अपने आनंद की परिपूर्णता में उन्हें और कुछ नहीं चाहिए होता, परंतु उनके लिए ये समझना आवश्यक था कि पुराने नियम के प्रतिरूपों और भविष्यवाणियों द्वारा उसके विषय में जो गवाही दी गई है उसे वे समझें। इन्हीं पर उनका विश्वास स्थापित होना चाहिए था। उन्हें मनाने के लिए मसीह ने कोई चमत्कार नहीं किया, बल्कि शास्त्रों की व्याख्या करना ही उनका प्रथम कार्य था। उन्होंने उसकी मृत्यु को अपनी सारी आशाओं के विनाश के रूप में देखा था। अब उन्होंने भविष्यद्वक्ताओं से दिखाया कि यही उनकी आस्था के लिए सबसे प्रबल प्रमाण था। इन शिष्यों को शिक्षा देते हुए यीशु ने अपने मिशन की गवाही के रूप में पुराने नियम के महत्व को दिखाया। अब बहुत से स्वयं को मसीही कहने वाले पुराने नियम को त्याग देते हैं ये कहकर कि उसका अब कोई उपयोग नहीं रहा, परंतु मसीह ने ऐसा नहीं सिखाया। उन्होंने उसे इतना महत्व दिया कि एक बार उन्होंने कहा, यदि वे मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की नहीं सुनते तो यदि कोई मृतकों में से भी जी उठे तो भी वे न मानेंगे। लूका 16:31। ये मसीह की ही वाणी है जो पितृपुरुषों और भविष्यद्वक्ताओं के माध्यम से बोलती है, आदम के दिनों से लेकर समय के अंतिम दृश्यों तक। उद्धारकर्ता पुराने नियम में उतनी ही स्पष्टता से प्रकट है जितनी नए नियम में। उसी भविष्यवाणीमय अतीत का प्रकाश है जो मसीह के जीवन और नए नियम की शिक्षाओं को स्पष्टता और सुंदरता के साथ उभारता है। मसीह के चमत्कार उनकी दिव्यता का प्रमाण है, परंतु इससे भी अधिक प्रबल प्रमाण कि वे संसार के उद्धार करता है, पुराने नियम की भविष्यवाणियों की तुलना नए नियम के इतिहास से करने में मिलता है। भविष्यवाणियों के आधार पर तर्क करते हुए मसीह ने अपने चेलों को ये सही समझ दी कि मानवता के बीच उनका क्या होना था। मनुष्यों की इच्छाओं के अनुसार अपना सिंहासन और राजकीय शक्ति ग्रहण करने वाले मसीहा की जो उनकी अपेक्षा थी वो भ्रामक रही थी। ये उनके सर्वोच्च से लेकर ग्रहण किए जा सकने वाले सबसे निम्न पद तक के अवतरण की सही समझ में बाधा डालती थी। मसीह चाहते थे कि उनके चेलों की धारणाएं प्रत्येक बात में शुद्ध और सत्य हों। उन्हें जितना संभव हो उस दुख के प्याले के विषय में समझना था जो उनके लिए नियत किया गया था। उन्होंने उन्हें दिखाया कि वो भयानक संघर्ष जिसे वे अभी समझ नहीं पा रहे थे उस वाचा की पूर्ति था जो जगत की स्थापना से पहले की गई थी। जैसे हर व्यवस्था का उल्लंघन करने वाले को यदि वो पाप में बना रहे मरना पड़ता है, वैसे ही मसीह को भी मरना था। ये सब होना था, परंतु इसका अंत पराजय में नहीं बल्कि महिमामय शाश्वत विजय में होना था। यीशु ने उन्हें बताया कि संसार को पाप से बचाने के लिए हर प्रयास किया जाना चाहिए। उनके अनुयायियों को जैसे वे जिए वैसे ही जीना चाहिए और जैसे उन्होंने काम किया वैसे ही काम करना चाहिए, प्रबल और निरंतर दृढ़ता के साथ प्रयत्न करते हुए। इस प्रकार मसीह अपने शिष्यों से बातें करते रहे, उनके मन खोलते हुए कि वे शास्त्रों को समझ सकें। शिष्य थके हुए थे पर बातचीत मंद नहीं पड़ी। जीवन और आश्वासन के वचन उद्धारकर्ता के होठों से निकलते रहे, फिर भी उनकी आंखें रोकी हुई थीं। जब वो उन्हें यरूशलेम के विनाश के विषय में बता रहा था, वे उस विनाश के लिए ठहराए गए नगर को रोते हुए देखते रहे, परंतु उन्हें अभी जरा भी संदेह नहीं था कि उनका सहयात्री कौन है। वे ये नहीं सोचते थे कि जिसकी चर्चा वे कर रहे थे वही उनके साथ साथ चल रहा है, क्योंकि मसीह अपने विषय में ऐसे बोल रहे थे मानो वो कोई और व्यक्ति हो। वे समझते थे कि वो उन लोगों में से एक है जो उस बड़े पर्व में सम्मिलित थे और अब अपने घर लौट रहे हैं। वो भी उन्हीं की तरह ऊबड़ खाबड़ पत्थरों पर सावधानी से चलता रहा और बीच बीच में थोड़ा विश्राम करने को उनके साथ रुकता रहा। इस प्रकार वे पर्वतीय मार्ग पर आगे बढ़ते रहे और वही जो शीघ्र ही परमेश्वर के दाहिने हाथ पर अपना स्थान लेने वाला था और जो ये कह सकता था स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, उनके साथ साथ चलता रहा। मत्ती 28:11। यात्रा के दौरान सूर्य अस्त हो चुका था और यात्रियों के विश्राम स्थान तक पहुंचने से पहले ही खेतों के मजदूर अपना काम छोड़ चुके थे। जब चेले अपने घर में प्रवेश करने ही वाले थे तो वो अजनबी ऐसा प्रतीत हुआ मानो वो अपनी यात्रा आगे जारी रखेगा, पर चेलों का मन उसकी ओर खिंच गया। उनके प्राण उससे और सुनने को आकुल थे। हमारे साथ ठहरिए, उन्होंने कहा। वो निमंत्रण स्वीकार करता नहीं प्रतीत हुआ, पर उन्होंने आग्रह किया। सांझ हो चली है और दिन बहुत ढल चुका है। तब मसीह ने इस विनय को स्वीकार किया और उनके साथ ठहरने के लिए भीतर गए। यदि शिष्यों ने अपने निमंत्रण पर आग्रह न किया होता तो उन्हें ये पता न चलता कि उनके सहयात्री पुनरुत्थित प्रभु थे। मसीह कभी किसी पर अपनी संगति नहीं थोपते। वे उन्हीं पर ध्यान देते हैं जिन्हें उनकी आवश्यकता होती है। वो सहर्ष सबसे साधारण घर में प्रवेश करते हैं और सबसे दीन हृदय को ढार्ष बंधाते हैं। परंतु यदि लोग स्वर्गीय अतिथि के विषय में सोचने से उदासीन रहें या उससे अपने साथ ठहरने की विनती न करें तो वो आगे बढ़ जाते हैं। इस प्रकार बहुत से लोग बड़ी हानि उठाते हैं। वे मसीह को उतना ही कम जानते हैं जितना कि शिष्य जानते थे जब वो मार्ग में उनके साथ चल रहा था। रोटी का साधारण शाम का भोजन जल्दी ही तैयार हो जाता है। उसे अतिथि के सामने रखा जाता है जो मेज के सिरहाने बैठ चुके हैं। अब वे भोजन को आशीर्वाद देने के लिए अपने हाथ फैलाते हैं। शिष्य आश्चर्य से पीछे हट जाते हैं। उनका साथी अपने हाथ बिल्कुल उसी तरफ फैलाता है जैसा उनके गुरु किया करते थे। वे फिर देखते हैं और देखो, उसी के हाथों में कीलों के निशान दिखाई देते हैं। दोनों एक साथ पुकार उठते हैं, ये प्रभु यीशु हैं। वे मृतकों में से जी उठे हैं। वे उठ खड़े होते हैं कि उसके चरणों में गिरकर उसकी आराधना करें, पर वो उनकी आंखों से ओझल हो गया है। वे उस स्थान को देखते हैं जहां अभी अभी वही उपस्थित था, वही जिसका शरीर हाल ही में कब्र में पड़ा था, और आपस में कहते हैं, क्या जब वो मार्ग में हमसे बातें कर रहा था और जब उसने हमें शास्त्रों को खोलकर समझाया, तब हमारा हृदय हमारे भीतर नहीं जल उठा था? परंतु ये महान समाचार सुनाने के लिए वे बैठकर बातें नहीं कर सकते। उनकी थकान और भूख मिट गई है। वे अपना भोजन बिना चखे ही छोड़ देते हैं और आनंद से भरकर तुरंत उसी मार्ग पर फिर निकल पड़ते हैं जिससे वे आए थे, शहर में शिष्यों को ये समाचार सुनाने की जल्दी में। कुछ जगहों पर रास्ता सुरक्षित नहीं है, फिर भी वे खड़ी चढ़ाइयों पर चढ़ते जाते हैं, चिकने पत्थरों पर फिसलते हुए। वे ये नहीं देखते, ये नहीं जानते कि उन्हें उसकी सुरक्षा प्राप्त है जो उनके साथ इस मार्ग पर चला है। हाथ में तीर्थयात्री की लाठी लिए वे आगे बढ़ते जाते हैं, जितना साहस कर सके उससे भी तेज चलने की इच्छा में। कभी उनका रास्ता छूट जाता है, पर वे उसे फिर पा लेते हैं। कभी दौड़ते हुए, कभी ठोकर खाते हुए, वे आगे ही बढ़ते जाते हैं। उनका अदृश्य साथी पूरे रास्ते उनके बिल्कुल पास रहता है। रात अंधेरी है, परंतु धर्म का सूर्य उन पर चमक रहा है। उनके हृदय आनंद से उछल उठते हैं। उन्हें लगता है कि वे मानो एक नए संसार में हैं। मसीह एक जीवित उद्धार करता है। वे अब उन्हें मृत समझकर शोक नहीं करते। मसीह जी उठे हैं, वे इसे बार बार दोहराते हैं। यही संदेश वे शोकाकुलों तक ले जा रहे हैं। उन्हें इम्माउस की राह की अद्भुत कहानी बतानी है। उन्हें यह भी बताना है कि मार्ग में उनसे कौन आ मिला। वह सबसे महान संदेश लिए हुए हैं जो कभी संसार को दिया गया है, ऐसे शुभ समाचार का संदेश जिस पर समय और अनंतकाल के लिए मानव परिवार की आशाएं निर्भर करती हैं। युगों की अभिलाषा 790 तक 808 लाख।